एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक
ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, शायद थोड़ी बेचैन भी।
हाँ, किताब का नाम है अगेंस्ट मेथड, यानी कार्यप्रणाली के विरुद्ध, और लेखक हैं पॉल फायराबेंड।
ये किताब ना सीधे सीधे विज्ञान की जड़ों पर सवाल उठाती है। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि साइंस एक बिल्कुल सीधा साफ रास्ता है, कुछ नियम है, एक वैज्ञानिक विधि है
जिसे फॉलो करो और तरक्की होती जाएगी, पर क्या सच में ऐसा है?
फायराबेंड कहते हैं, आहा, बिल्कुल नहीं। और आज के जमाने में जब हर तरफ से वैज्ञानिक दावे और एक्सपर्ट्स की बातें हम पर बरस रही हैं, ये किताब और भी जरूरी हो जाती है।
सही बात है, ये हमें सिखाती है कि कैसे किसी भी दावे पर, किसी भी अथॉरिटी पर, यहाँ तक कि साइंस की अथॉरिटी पर भी, सवाल कैसे उठाया जाए।
कार्ल फायरबेंड 1924 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, एक दार्शनिक, और अपने फील्ड मतलब विज्ञान के दर्शन में शायद सबसे ज्यादा असरदार और उतने ही कॉन्ट्रोवर्शियल भी।
हाँ, उनकी कहानी भी थोड़ी अलग सी है। शुरू में वो एक ग्रुप था, वियना सर्कल, उसके विचारों से जुड़े थे, फिर वो कार्ल पॉपर के स्टूडेंट बन गए।
वही कार्ल पॉपर जिन्होंने मिथ्याकरण का सिद्धांत दिया था कि थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश करो।
हाँ वही, लेकिन फायराबेंड अपने गुरु से भी आगे निकल गए। मतलब वो पॉपर के नियम आधारित सोच के बिल्कुल खिलाफ खड़े हो गए।
अच्छा, तो वो एक तरह से सिस्टम के अंदर के आदमी थे जो बाद में सबसे बड़े आलोचक बन गए।
एग्जैक्टली, वो साइंस की फिलॉसफी को बहुत गहराई से जानते थे, पर उन्होंने साइंस की हिस्ट्री, खासकर फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी, उसका इस्तेमाल करके दिखाया कि देखो, जो नियम तुम लोग बनाते हो ना, था जोशीले, बहस करने वाले, कभी कभी जानबूझकर उकसाने वाले।
मैंने पढ़ा था वो खुद को मजाक में दरबारी विदूषक कहते थे, कोर्ट जेस्टर।
हाँ, शायद उनका मकसद ही यही था कि वो मजाक और अतिशयोक्ति से नियमों की अकड़ और वैज्ञानिक कट्टरता को दिखा सकें।
ये भी कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू में वो बुरी तरह घायल हुए थे, शायद उस अनुभव ने उन्हें हर तरह के कठोर व्यवस्था के प्रति थोड़ा शक्की बना दिया था।
हो सकता है। तो अब आते हैं किताब पर, अगेंस्ट मेथड। ये कोई मामूली एकेडमिक किताब नहीं है।
नहीं, ये तो एक तरह का फिलोसॉफिकल मैनिफेस्टो है, एक बगावत। ये साइंस की वो चमचमाती परफेक्ट इमेज को तोड़ती है जिसमें उसे एकदम लॉजिकल व्यवस्थित माना जाता है।
तो उनका मेन आर्गुमेंट क्या है, क्या कहना चाहते हैं फायराबेंड?
बहुत सीधी और उतनी ही क्रांतिकारी बात कि कोई एक यूनिवर्सल वैज्ञानिक विधि नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है जो हमेशा काम करे।
और अगर आप ऐसी किसी एक विधि पे जोर देंगे
तो वो असल में साइंस की तरक्की को रोकेगी। वो कहते हैं कि विज्ञान की तरक्की का रास्ता सीधा नहीं, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा, अराजक, मौका परस्त और कई बार तो अतार्किक भी होता है, नियम तोड़ने पड़ते हैं।
और यहीं से आता है उनका वो फेमस नारा जिस पर बहुत बहस होती है,
एनीथिंग गोज, कुछ भी चलेगा।
हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप मान लो।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई अराजकता का न्योता नहीं है, ये इतिहास को देखकर निकाला गया एक निष्कर्ष है। फायराबेंड कहते हैं, आप कोई भी नियम बता दो साइंस का,
जैसे नई थियरी पुरानी से मेल खानी चाहिए।
हाँ बिल्कुल, तो इतिहास में कोई ना कोई ऐसा महान वैज्ञानिक मिल जाएगा जिसने ठीक उसी नियम को तोड़ा होगा और उसी वजह से कोई बड़ी खोज हुई होगी।
तो ये किताब हमें साइंस की साफ सुथरी लैब से निकालकर इतिहास की धूल भरी, थोड़ी गड़बड़ वाली गलियों में ले जाती है।
गड़बड़, जुगाड़, प्रोपेगेंडा और उस रचनात्मक अराजकता को छुपा देती है जो शायद सफलता के लिए जरूरी थी।
चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं, उनके कुछ मुख्य तर्कों को समझते हैं। पहला है, ये थोड़ा भारी शब्द है, ज्ञान मीमांसवाद अराजकतावाद।
हाँ, एपिस्टेमोलॉजिकल अनार्किज्म। पर नाम से डरने की जरूरत नहीं, अराजकतावाद का मतलब यहाँ दंगा फसाद नहीं है।
तो क्या है?
इसका मतलब है ये मानना कि ज्ञान पाने का कोई एक फिक्स्ड शाही रास्ता नहीं है, कोई एक मेथड, कोई एक रूल हमेशा लागू नहीं होता।
और वो खास तौर पर दो नियमों को टारगेट करते हैं, है ना, जो साइंस में बहुत माने जाते हैं।
हाँ, पहला संगति की शर्त, कंसिस्टेंसी कंडीशन, कि नई थ्योरी को पुरानी स्थापित थ्योरी से सहमत होना चाहिए।
फायराबेंड कहते हैं ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो नई सोच को दबा देगा। अगर हर नई चीज पुरानी से मेल खानी चाहिए तो फिर नया आएगा कहां से?
सोचिए, क्वांटम मैकेनिक्स अगर न्यूटन की क्लासिकल मैकेनिक्स से पूरी तरह संगत होने की कोशिश करती तो क्या वो विकसित हो पाती? शायद नहीं।
बिल्कुल। और दूसरा नियम जिस पर वो सवाल उठाते हैं वो उनके अपने गुरु पॉपर का है, मिथ्याकरण का सिद्धांत।
की थियोरीज को गलत साबित करने की कोशिश करो, फायरबेंड कहते हैं, ये भी हमेशा ठीक नहीं है। असल में वैज्ञानिक अक्सर अपनी नई होनहार थ्योरीज को शुरुआती आलोचना से बचाते हैं,
भले ही शुरू में उनके पास पूरे सबूत ना हो।
हाँ, और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि हर नई थ्योरी शुरू में कच्ची होती है, उसमें कमियां होती हैं, उसे थोड़ा टाइम चाहिए होता है पनपने के लिए, थोड़ी जिद दिखानी पड़ती है।
तो अगर ये नियम काम नहीं करते तो फिर करें क्या? फायरबेंड कुछ उल्टे नियम बताते हैं, जैसे काउंटर इंडक्शन।
काउंटर इंडक्शन मतलब जानबूझकर ऐसी थ्योरीज बनाओ जो स्थापित तथ्यों या सिद्धांतों के खिलाफ जाती हों।
अरे ऐसा क्यों?
क्योंकि ऐसा करने से मौजूदा थ्योरी की कमजोरियां और उसकी छुपी हुई मान्यताएं सामने आती हैं। ये जमे हुए तालाब में पत्थर फेंकने जैसा है।
अच्छा, दिलचस्प है। और दूसरा?
प्रसार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोलिफरेशन, यानी एक ही समय में कई अलग अलग, यहाँ तक कि एक दूसरे के विरोधी सिद्धांतों पर भी काम करो।
एक साथ कई घोड़ों पर सवारी।
हाँ, कह सकते हैं विचारों की ये विविधता एक हेल्दी माहौल बनाती है। किसी एक थ्योरी का दबदबा खतरनाक हो सकता है, जैसे बढ़ई के पास सिर्फ हथौड़ा नहीं होता, कई औजार होते हैं। ज्ञान की खोज में भी अलग अलग औजारों की जरूरत है।
ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे किताब का दिल कहा जाता है, गैलीलियो की केस स्टडी।
हाँ, फायरबेंड इसी उदाहरण से दिखाते हैं कि उनका कुछ भी चलेगा वाला आइडिया कैसे काम करता है। गैलीलियो ने कॉपरनिकस के मॉडल का समर्थन किया था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है।
हम तो गैलीलियो को तर्क और विज्ञान के हीरो के रूप में जानते हैं।
हाँ, पर फायरबेंड कहते हैं, रुकिए जरा, कहानी इतनी सीधी नहीं है। वो दिखाते हैं कि उस समय के मानकों के हिसाब से गैलीलियो के खिलाफ जो तर्क थे वो ज्यादा मजबूत थे।
जैसे?
जैसे उनके विरोधी पूछते थे, भाई अगर पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही है तो जब हम टावर से पत्थर गिराते हैं वो सीधा नीचे क्यों गिरता है, थोड़ा पीछे मतलब पश्चिम की तरफ क्यों नहीं गिरता?
हाँ, ये तो लॉजिकल सवाल लगता है।
बिल्कुल, और गैलीलियो के पास उस समय इसका कोई ठोस संतोषजनक जवाब नहीं था। अगर वो नियमों से चलते तो उन्हें कॉपरनिकस की थ्योरी छोड़ देनी चाहिए थी, पर वो अड़े रहे।
और वो टेलीस्कोप वाली बात भी है ना।
हाँ, गैलीलियो ने जिन शुरुआती दूरबीनों का इस्तेमाल किया वो आज के स्टैंडर्ड से बहुत, कह सकते हैं, अविश्वसनीय थी। धुंधली इमेज दिखाती थी। गैलीलियो को लोगों को मनाना पड़ा कि अपनी आंखों देखी चीजों पर नहीं, इस नए अजीब से यंत्र पर भरोसा करो।
और जब उनकी ऑब्जर्वेशन और थ्योरी में फिट नहीं बैठता था तो
के पर ही कुछ एड हॉक यानी काम चलाऊ स्पष्टीकरण बना लेते थे। अब सवाल ये है कि क्या ये अच्छे विज्ञान का तरीका है?
ये तो सोचने वाली बात है।
और फायरबेंड यहाँ एक बहुत जरूरी चीज पर जोर देते हैं, प्रचार और बयानबाजी का रोल, रिटोरिक। गैलीलियो सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक जबरदस्त प्रचारक भी थे।
उन्होंने लैटिन छोड़कर आम इटालियन भाषा में लिखा था ना।
हाँ, ताकि ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे। अपने विरोधियों का मजाक उड़ाया, तीखे व्यंग्य किए। उनकी जीत सिर्फ लॉजिक के दम पर नहीं हुई, उनके समझाने बुझाने का तरीका, उनकी पर्सनालिटी, माहौल बनाने की कला, इन सब का बड़ा हाथ था।
तो फायरबेंड का फाइनल टेक क्या है गैलीलियो पर?
कि वो कोई नियमों में बंधे सीधे साधे वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक शानदार चालाक अवसरवादी थे जिन्होंने अपनी पसंदीदा थ्योरी को जिताने के लिए हर तरीका अपनाया, लॉजिकल, इलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सब कुछ।
और उनका कहना है कि अगर गैलीलियो नियमों पर चलते तो शायद कॉपरनिकन क्रांति दब जाती।
हाँ, यही उनका पॉइंट है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम वैज्ञानिक प्रगति कहते हैं वो असल में होती कैसे है।
बिल्कुल, और गैलीलियो का ये उदाहरण हमें फायरबेंड के एक और गहरे विचार की तरफ ले जाता है, अतुलनीयता, इनकमेंश्यूरेबिलिटी।
ये शब्द उन्होंने थॉमस कुन से लिया था, लेकिन इसे और ज्यादा रेडिकल बना दिया।
इसका मतलब क्या है आसान भाषा में?
मतलब ये कि जब साइंस में कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है, जैसे न्यूटन की फिजिक्स से आइंस्टाइन की फिजिक्स तक का सफर, तो ये दो दुनियाएं इतनी अलग होती हैं कि आप उनकी सीधी सीधी निष्पक्ष तुलना नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि वो बुनियादी शब्दों का मतलब ही बदल देते हैं, जैसे द्रव्यमान यानी मास। न्यूटन के लिए वो एक फिक्स्ड चीज थी, आइंस्टीन के लिए वो स्पीड के साथ बदल सकती है, अब आप सिर्फ मास के आधार पर कैसे तय करेंगे कि कौन ज्यादा सही है जब शब्द का मतलब ही अलग है दोनों के लिए?
ये तो ऐसा हुआ जैसे आप पूछ रहे हो कि क्रिकेट बैट बेहतर है या हॉकी स्टिक।
हाँ, कुछ वैसा ही। वो अलग अलग खेल के लिए है, उनकी दुनिया अलग है, उनकी सीधी तुलना मुश्किल है।
और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है, अवलोकन सिद्धांत भारित होता है, थियरी लेडन ऑब्जर्वेशन।
इसका मतलब है कि हम जो देखते हैं वो कभी भी पूरी तरह ऑब्जेक्टिव निष्पक्ष नहीं होता। हम दुनिया को अपनी मौजूदा समझ, अपनी थियोरीज के चश्मे से ही देखते हैं।
जैसे डॉक्टर एक्सरे में कुछ देख लेता है जो हमें नहीं दिखता।
बिल्कुल, उनका मेडिकल ज्ञान तय करता है कि वो क्या देख रहे हैं। तो जब बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत बदलते हैं तो तथ्य भी बदल जाते हैं, या कम से कम उनकी व्याख्या बदल जाती है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सिद्धांतों के बीच का चुनाव हमेशा पूरी तरह लॉजिकल नहीं होता, उसमें पसंद, विश्वास, इनका भी रोल होता है।
हाँ, फायर एबिंड के अनुसार बिल्कुल होता है, और गैलीलियो की तरह प्रचार का भी।
ये सब तो ठीक है, पर किताब के आखिर में फायर एबिंड एक बहुत ही रेडिकल राजनीतिक मोड़ लेते हैं।
हाँ, वो कहते हैं कि आज के समाज में विज्ञान लगभग एक धर्म जैसा बन गया है। उसे ज्ञान का एकमात्र सच्चा रास्ता मान लिया गया है, और वैज्ञानिकों को पुजारियों जैसा दर्जा मिल गया, जिनकी बात पर सवाल नहीं उठाना चाहिए।
और वो चेतावनी देते हैं कि विज्ञान का ये अत्याचार, ये डोमिनेंस, एक स्वतंत्र समाज के लिए खतरा है।
बिल्कुल, और फिर वो अपना सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सुझाव देते हैं, विज्ञान और राज्य का पृथककरण, सेपरेशन ऑफ साइंस एंड स्टेट।
जैसे चर्च और स्टेट अलग होते हैं।
हाँ, उसी तर्ज पर।
पर इसका मतलब क्या हुआ, क्या स्कूलों में साइंस पढ़ाना बंद कर दें?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं। फायर एबिंड की कल्पना एक ऐसे समाज की है जहाँ विज्ञान का सम्मान हो, उसे पढ़ाया जाए, पर वो ज्ञान की कई अलग अलग परंपराओं में से सिर्फ एक मानी जाए, उसका एकाधिकार ना हो।
और ये कौन तय करेगा कि क्या पढ़ाया जाए?
नागरिक, डेमोक्रेटिक तरीके से। वो तय करें कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, मॉडर्न साइंस या पारंपरिक ज्ञान, या दोनों का मिश्रण। वैज्ञानिक सलाहकार हों, पर वो हमारे राजा या शासक न बने।
वाह, ये तो वाकई बहुत ही रेडिकल विचार है। ये उनकी अराजकतावादी सोच को सही मायने में सामने लाता है, मतलब बौद्धिक और सांस्कृतिक विविधता का खुला समर्थन।
हाँ, कि किसी एक तरीके को, चाहे वो पश्चिमी विज्ञानी क्यों ना हो, परम सत्य मानकर बाकी सबको छोटा न समझा जाए।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें क्या निकलती हैं?
पहली तो यही ज्ञान मीमांसिया अराजकतावाद वाली बात, कि एनीथिंग गोज का मतलब हंगामा नहीं बल्कि लचीलापन है, अलग अलग तरीकों को आजमाने की जरूरत। जैसे हम जुगाड़ करते हैं ना मुश्किल में।
हाँ बिल्कुल, जरूरत पड़ने पर नियम बदलने या तोड़ने की हिम्मत।
दूसरी कि कोई एक वैज्ञानिक विधि नहीं है, महान खोजें अक्सर नियमों को तोड़ने से हुई हैं। विधि का आइडिया बाद में बनाया गया, एक आदर्श है।
तीसरा, काउंट और इंडक्शन और विचारों की बहुलता, मतलब जानबूझकर लीक से हटकर सोचना और कई विरोधी विचारों को भी जगह देना, ये सोच को ताजा रखता है।
चौथा, ये समझना कि विज्ञान एक मानवीय गतिविधि है, इसमें तर्क के साथ भावनाएं, पसंद नापसंद, यहां तक कि प्रचार का भी रोल है। गैलीलियो का उदाहरण यही दिखाता है।
और पांचवा, जो मुझे बहुत जरूरी लगा, विज्ञान के भी हठधर्मी बनने का खतरा। जब उसे एकमात्र सच मान लिया जाता है तो वो खुद एक बंद सोच बन सकता है। एक्सपर्ट्स की सुनो पर आंखें बंद करके नहीं, सवाल पूछो।
फायर एबिंड के लिखने का तरीका भी बड़ा मजेदार है। कुछ लाइनें तो ऐसी हैं जो याद रह जाती हैं।
हाँ, जैसे वो सबसे फेमस वाली, एकमात्र सिद्धांत जो प्रगति को बाधित नहीं करता है, कुछ भी चलेगा, एनीथिंग गोज। ये एक हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन है, याद रखना होगा।
बिल्कुल, या फिर ये, एक स्वतंत्र समाज वह समाज है जिसमें सभी परंपराओं को समान अधिकार और सत्ता तक समान पहुंच दी जाती है। ये उनके पॉलिटिकल विजन का निचोड़ है, ज्ञान पर किसी एक ग्रुप की मोनोपोली ना हो।
और एक और जो वैज्ञानिक रूढ़िवादिता पर चोट करती है, संगति की शर्त अनुचित है क्योंकि ये पुरानी थ्योरी को संरक्षित करती है, ना कि बेहतर थ्योरी को। नए विचारों को पुराने सांचे में फिट करने से वो मर जाते हैं।
तो अब सवाल ये उठता है कि इस सब फिलॉसफी का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम?
हाँ, ये तो बड़े भारी भरकम आइडियाज हैं, हम क्या करें इनका?
अरे बहुत कुछ कर सकते हैं। सोचिए बिजनेस और इनोवेशन में, कंपनियां अक्सर बेस्ट प्रैक्टिसेस के चक्कर में एक ही ढर्रे पर चलती हैं। फायर एबिंड का काउंटर इंडक्शन यहां काम आ सकता है।
मतलब जो सब कर रहे हैं उसका उल्टा सोचो।
हाँ, क्या पता वही अगला बड़ा आइडिया बन जाए। कितने ही स्टार्टअप्स ने बिल्कुल नए अतार्किक तरीकों से ही तो कमाल किया है।
और पर्सनल लाइफ में, अगर कहीं अटक गए हैं, सारे लॉजिकल तरीके फेल हो गए हैं,
तो कुछ एकदम उल्टा इलॉजिकल ट्राई करके देखो, क्या पता वही काम कर जाए। ये हमें बंधे बनाए रास्तों से हटकर सोचने की हिम्मत देता है।
शिक्षा में तो ये बहुत ही रिलेवेंट है। सिर्फ फैक्ट्स रटाने के बजाय बच्चों को सवाल पूछना सिखाना, अलग अलग नजरिए दिखाना और ये समझाना कि ज्ञान कैसे विकसित होता है, गलतियों से, बहसों से,
और हाँ, कभी कभी नियम तोड़ने से भी, कैसे सोचना है ये सिखाना।
और समाज में ये हमें एक्सपर्ट्स की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से रोकता है। उनकी सुनो, सम्मान करो, पर अपनी अक्ल भी लगाओ, आम लोगों के अनुभव का भी महत्व समझो।
मेरे लिए तो इस किताब से सबसे बड़ा टेक अवे है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, मतलब ये समझना कि ज्ञान की दुनिया इतनी बड़ी और पेचीदा है कि कोई एक तरीका या नजरिया उसे पूरी तरह पकड़ नहीं सकता। हमें हमेशा सीखने और सवाल करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
और मुझे सबसे ज्यादा जो बात पसंद आई वो है बहुलता का सम्मान। अलग अलग सोच, अलग अलग तरीके, अलग अलग कल्चर, ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। फायराबैंड साइंस के दुश्मन नहीं थे, वो खट्टरता के दुश्मन थे।
बिल्कुल, वो तो विज्ञान को उन दार्शनिक नियमों से आजाद करना चाहते थे जो उसे बांध रहे थे, ताकि वो और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। ये किताब हमें हर फील्ड में ज्यादा साहसी और खुले विचारों वाला बनने के लिए उकसाती है।
तो मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।